તારીખ 12/7/1993 શ્રી પરમા ગમસાર બોલ નંબર 131 અને 210 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 63
પ્રવચનનો વિષય છે ये गुरुदेव श्री के वचनामृत है जो समय सार की 17-18 गाथा का विषय है। इस विषय का प्रतिपादन करके आचार्य भगवान ने अज्ञानी को मोक्ष मार्ग सुगम और सुलभ बताया। वैसे मोक्ष मार्ग बहुत दुर्लभ हैं, लाखों करोड़ों जीव में किसी एक को मोक्ष मार्ग मिलता है ऐसा देखने में आता है, फिर भी इसकी दुर्लभता संख्या के कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। संसारी जीवों को संसार इतना प्रिय है, तो अपने संसार भाव को छोड़ना नहीं चाहता, किंतु मोक्ष मार्ग इतना कठिन नहीं है। दुर्लभता है वो संख्या की अपेक्षा है, वास्तव में मार्ग में कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। ये यहाँ से निकलता है कि खुद आचार्य भगवान कहते हैं कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको जानने में आ ही रहा है। फिर तू इसको क्यों नहीं जानता है, जानने में आ ही रहा है फिर क्यों नहीं जानता है? तो इस बात पर से हमें भीतर में खोज करनी चाहिए कि कैसे आत्मा अनुभव में आ रहा है, और पर्याय को आत्मा क्यों कहा। कि अनुभूति तो अनुभव की पर्याय को अनुभूति कहते हैं, अनुभूति किसको कहते हैं? कि जो अनुभव की क्रिया है उसको अनुभूति कहते हैं, तो क्रियावाचक नाम है, और उसको आत्मा कहा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जैसा आत्मा है वैसी ही है। ज्ञान सो ही है आत्मा, ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कह करके ज्ञान में पूरा आत्मा दिखा दिया है, एक ज्ञान में ही पूरा आत्मा दिखा दिया है, इसलिए वो सुगम है और सुलभ है। नहीं जानने का यही कारण है कि ज्ञान की दशा में वो विकल्प के राग के अधीन वर्तता है। राग की मुख्यता उतनी है, राग में तन्मयता उतनी है कि ज्ञान होते हुए भी ज्ञान है ऐसा लक्ष्य में नहीं रहता है, जीव ज्ञान को चूक जाता है। राग में उतना तन्मय रहता है कि ज्ञान को चूक जाता है, वरना ज्ञान का स्वभाव तो इतना ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व मैंने आगे है, मुख्य है, कि राग है वो भी बिना ज्ञान कौन जान सकता है कि राग का अस्तित्व है। ज्ञान बिना तो पता नहीं चलता कि मुझे राग हुआ, मुझे क्रोध हुआ, ये कहां से पता चला? ज्ञान ने जाना तब तो पता चला। तो पहला तो ज्ञान है, पहला होने पर भी उनको बिल्कुल गिनता ही नहीं है। ज्ञान को तो इनगिना करके राग में तन्मय रहता है, उसको गुरुदेव कहते हैं कि वो विकल्प के अधीन हो गया है, इसलिए उनको अपना ज्ञान मैंने भगवान आत्मा जानने में नहीं आता है, इसी कारण से नहीं जानने में आता है। ज्ञान रूपी शीशा अरीसा मैंने दर्पण, ज्ञान रूपी दर्पण की स्वच्छता में भगवान आत्मा जानने में आता है, फिर भी इसकी खबर क्यों नहीं पड़ती? ज्ञान रूपी दर्पण में अपना स्वग्ने ही जानने में आता है, फिर क्यों पता नहीं चलता? क्यों? कि राग के विकल्प के वश होने से, यही कारण है कि वो विकल्प के वश वर्तता है। विकल्प है सोई में हूं, विकल्प के सिवा अपना आत्मा उनको कहीं भी दिखता नहीं है। जितना राग उतना मैं, वो एक मिथ्या अध्यास है। वास्तविक ऐसा है नहीं, वो मिथ्या अध्यास है। लेकिन ऐसा मिथ्या अनुभव करता है अध्यासित भाव से कि जितना राग उतना मैं, ऐसा अध्यास करते हैं। इसलिए राग विकल्प के वश हुआ होने से उनकी नजर में राग आता है, उनकी नजर में राग आता है। इसलिए भगवान आत्मा जनाने पर भी जनाता नहीं, ज्ञान में आने पर भी जानने में नहीं आता। जैसे उपयोग विहीन चक्षु होता है, जैसे आंख खुली हो, उपयोग कोई और जगह है, क्या बनता है? उपयोग नहीं होवे और खुली हो, दूसरे को ऐसा लगे कि इधर देखते हैं, जो में बैठे हैं उनको ये लगे कि इधर देखते हैं। आंख खुली भी हो, उपयोग और जगह हो तो आंख में जो दर्पण है उसमें प्रतिबिंब तो आएगा ही, प्रतिबिंब आने पर भी वो उसको जानेगा नहीं। ऐसा ही कान का है, कान को तो कोई ढक्कन नहीं, कान हमेशा खुला ही रहता है, लेकिन सुनते सुनते भी अगर उपयोग और जगह चला गया तो हम कहेंगे कि आप क्या बोले, मैंने सुना नहीं। आपने बोला तो सही लेकिन मैंने सुना नहीं, इसका मतलब क्या? कि कान तो खुला ही था, कान खुला था लेकिन उपयोग वाला लक्षण नहीं था। वैसे ज्ञान में, ज्ञान जानने में तो आता ही है, और ज्ञान मैंने आत्मा, यहाँ वहां त्रिकाली की बात नहीं है, ज्ञान मैंने आत्मा, आत्मा मैंने ज्ञान, ज्ञान से ही आत्मा समझाते हैं। श्री गुरु तो ज्ञान से ही आत्मा को समझाते हैं यहाँ पर अज्ञानी को। तो फिर तेरा ज्ञान तो तेरे अनुभव में आता ही है, और तेरे ज्ञान के सिवा तेरे अनुभव में दूसरी चीज आने की कोई अवकाश और गुंजाइश भी नहीं है। दूसरे का अनुभव हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता जी, ऐसी एक वस्तु स्थिति है। फिर भी लक्ष्य और जगह है, उपयोग और जगह है, तो छुप जाता है। तो कहते हैं कि विकल्प के वश हुआ होने से उनकी नजर में राग आता है, लेकिन इसे भगवान आत्म भगवान जनान जनाता हुआ होने पर भी जानने में नहीं आता, ये हालत हो जाती है। अज्ञानी जीव अनादि से दया दान आदि विकल्प के अधीन हो गया है, और ज्ञान की वर्तमान दशा में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है तो भी उसको जानता नहीं है। तो इसलिए इस पर स्पष्टीकरण दिया कि भगवान आत्मा मैंने इधर कौन है, भगवान आत्मा के ज्ञान ही आत्मा है। को कैसा ज्ञान आत्मा है? कि जो वेदन रूप ज्ञान है वही आत्मा है, मतलब दूसरा कोई आत्मा नहीं है। लेकिन स्वपना उसमें होवे तो, स्वपना ज्ञान में होवे तो ये वेदन होने पर भी अपने ज्ञान में आने वाला नहीं है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। तो इस पर से उपदेश क्या लेना है कि हमें हमारा लक्ष्य है उसको बदलना है, नहीं पर से लक्ष्य हटाना है, अपने ज्ञान पर लक्ष्य को ले जाना है। मुझे अनुभव क्या हो रहा है, तो ऐसे करने के लिए बोला था, इसकी कोशिश तो करें, बात तो सुनी लेकिन इसकी कोशिश तो करें जी। हाँ ठीक है, राजा दी गाने को हाँ ठीक है, बिल्कुल
अच्छी बात
यही कारण है कि जैसा कहते हैं ऐसा समझ तो लेते हैं, समझ में तो बात आती है। कहते हैं जैसे आपने कहा कि आत्मा ऐसा है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर्य है, अनंत सुख है, ज्ञान भरा है, पुस्तक में तो कम है, ये बात हमारी समझ में आती है, लेकिन हम समझ का प्रयोग नहीं करते, समझ का उपयोग नहीं करते। नहीं कर सकते हैं लेकिन करना चाहते हैं कि नहीं, वो सवाल है। नहीं भले ही अवस्था गलत है लेकिन अवस्था कोई स्थायी चीज नहीं, अवस्था बदलने वाली चीज है और समय समय पर हर एक की अवस्था बदलती है। जैसे कोई बीमार है तो इसकी बीमारी की अवस्था क्या हमेशा रहती है? कोई तंदुरुस्त हो ही नहीं सकता क्या, ऐसा मान लिया जाए क्या? डायबिटीज कितनों कितने के डायबिटीज ठीक हो गया है आजकल तो कितने का ठीक हो गया। 80 साल के जो शंकराचार्य था, इसका एक सर्टिफिकेट मैंने पढ़ा कि 80 साल की उम्र में मेरा डायबिटीज चला गया। ऐसा नहीं है, मान लिया है हमने कि जाता नहीं है लेकिन जाता है। देखिए साहब, हमारे जितने भी तीर्थंकर हो गए, कितने हो गए? अनंत हो गए, अनंत 24 ही हो गए। अभी सिद्धालय में जितने भी सिद्ध परमात्मा हमारे हैं वो कितने हैं? अनंत हैं। वो क्या शुरू से हैं? वे हमारे जैसे संसारी थे, वो हमारे जैसे संसारी थे, हमारे जैसे अज्ञानी थे, अभी सिद्ध सिद्धालय में सिद्ध पद में विराजमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसी बात नहीं है। हमको ये अभिप्राय निकाल देना चाहिए, ये हमारा जो कोई प्रेजुडाइस है वो गलत है। नहीं, बिना तीर्थंकर भी मोक्ष तो होता है, तीर्थंकर होने की जरूरत नहीं मोक्ष होने में, सिद्धालय में जाने में तीर्थंकर होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान तीर्थंकर के समोसरण में करोड़ों केवली होते हैं दूसरे, और वो सिद्धालय में जाते हैं। भगवान तो 13वें गुण स्थान में रहते हैं और वो 14 गुण स्थान पार करके सिद्धालय में चले जाते हैं भगवान के पहले, तो वो भी साधारण तो थे पहले। हाँ हो सकता है, ठीक है, अच्छा है।
एक
यही कारण है कि सही रास्ता पे नहीं चलते हैं, गलत रास्ता पे चलते हैं और गलत रास्ता को सही रास्ता मान लेते हैं।
सही मार्ग बताइए।
अच्छा, आप मिले हैं? अच्छा,
तो एक बात उन्होंने बताई है।
अच्छा,
ठीक है,
काफी गुरुदेव का परिचय है। सोनगढ़ से बगल में 18 मील पास में हमारा सीढ़ी है, पावगढ़ करते हैं, इसलिए गुरुदेव के सानिध्य में काफी रहने का मौका हम लोगों को मिला है, इसलिए हमने तो काफी सुना है, काफी चर्चाएं हुई है, काफी परिचित हुए हैं हम लोग तो। तो ये तो इनके ही वचनामृत हैं, जो आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो तो स्वामी जी के ही वचनामृत हैं। वही कहते हैं 17-18 गाथा में, जो आचार्य भगवान कहते हैं वही वो कहते हैं, जो वो कहते हैं वो हम समझें और समझ करके उसी समझ का हम प्रयोग करें हमारे जीवन में, हमारे परिणमन में उसका प्रयोग करें, तो ये चीज़ हासिल हो सकती है। नहीं हो सकती ऐसी बात नहीं है, अनंतों का हुआ है आत्मकल्याण, अनंत जीवों ने किया, हम भी कर सकते हैं अगर सही रास्ते पे चले तो, गलत रास्ते पे तो नहीं होगा। तो ये बात जो है वो सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, उसको अलग अलग छांटना उतनी बात है, क्योंकि धर्म के नाम पर बहुत सी बातें चलती हैं, उसमें सही बात क्या है। तो हमारे कुंदकुंद आचार्य भगवान ने ये सूत्र दिया कि वत्थु स्वभावो धम्मो, धर्म क्या चीज है, कि धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, और वस्तु का स्वभाव क्या है, आत्मा एक वस्तु है, इसका स्वभाव क्या है कि सच्ची श्रद्धा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही सच्चा धर्म है। तो जैसा हमारा आत्मस्वरूप है वैसा ही हम उसका ज्ञान करें, ज्ञान पूर्वक वैसे ही श्रद्धा करें, और श्रद्धा ज्ञान पूर्वक वैसा ही अनुसरण करें, ये तो 17-18 गाथा का विषय है, इससे धर्म की प्राप्ति होती है। 17-18 गाथा में वही बात चली है कि पहले तो आत्मा को जाने, जान करके उसका श्रद्धान करे, श्रद्धा ज्ञान करने से आत्मा में उपयोग एकाग्र होने की शक्ति पैदा होगी और उपयोग स्थिर होगा, उसी का नाम आत्मा का चारित्र, आत्मचारित्र स्वरूपाचरण चारित्र है, और इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है। और अन्यथा प्रकार से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं है, ये बात अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने कहा और उसी का प्रवचन में से ये बात चल रही है कि जब ऐसी बात है तो जैसा आपने प्रश्न किया वैसा ही किसी ने प्रश्न किया होगा कि महाराज हम तो अज्ञानी रहे, हम क्या करें। तो देखिए तेरे अनुभव में कौन सी चीज आ रही है। हम कहते हैं कि तेरे अनुभव में ज्ञान आता है और ज्ञान है सोई आत्मा है, और हम नहीं माने कि नहीं नहीं मुझे तो राग का अनुभव होता है, मुझे तो लड्डू का अनुभव होता है, मुझे तो ठंडी गर्मी का अनुभव होता है। तो कहते हैं कि तेरी ये गलत फहमी है, इस गलत फहमी को तू छोड़ दो, ये भ्रांति में से निकल जाओ, तुझे तेरा ज्ञान का अनुभव हो रहा है। जहां तक तुझे हम कहते हैं, आचार्य महाराज श्री गुरु का क्या कहना है कि जैसा हम कहते हैं वैसा तुझे मालूम नहीं पड़े, वहां तक तू यहाँ खोज कर कि मेरी गलती कहाँ है। जैसे अपन वही खाता में हिसाब जोड़ते हैं तो सारे दिन में हमारी खुलती पुरात उतनी थी, इतना तो सारे दिन में जमा किया, इतना दिया हुआ उधार किया, बाकी जो बैलेंस बचा वो जब मिलती नहीं है तो कहीं जोड़ लगाने में भूल है। इतने तो पैसे थे, इतने आए इतने गए, बाकी इतने रह गए। अब हमारी पेटी में उतने नहीं रहते हैं, तो ज्यादा कम रहता है तो कहीं भी भूल तो गलती तो हुई है, गलती होने की संभावना है। और ये गलती का नाम ही संसार है, और क्या है। संसार किसका नाम है, ये गलती का नाम, गलत भ्रांति है इसका नाम का तो संसार है। तो वहां क्या करना पड़ता है कि बार बार हम देखते हैं कि कहीं 50 के जगह 500 तो नहीं लिखा गया, जब तो 450 का फर्क आएगा, या तो जमा वाली रकम उधार तो नहीं हुई, उधार की जमा तो नहीं हुई, डबल फेर हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी गलती है, तो गलती के लिए खोज करना वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता तो है ही नहीं। जब आचार्य महाराज ये कहते हैं कि तुझे तेरा आत्मा तेरा ज्ञान ही अनुभव में आता है, दूसरा अनुभव में आ ही नहीं सकता, तो हमें इसके अलावा दूसरा अनुभव कोई लगता है या महसूस होता है तो हमारी गलती को हम खोज करके निकाल दें। यही इसका सच्चा उपाय तो यही है, दूसरा कोई उपाय तो इसका नहीं है। तो इसलिए ये जो बात कही है 17-18 गाथा में वो अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए कही है। क्या इरादा है इस बात करने में, कि गुरु महाराज का ये इरादा है कि तुम अज्ञानी है मैं जानता हूं, और तुझे ज्ञानी होने की भावना है तो मुझे ये बात तुमको तेरी जिज्ञासा है तो कहता हूं, अगर तुझे सुनने की रुचि है तो, अगर सुनने की रुचि नहीं है तो उनके लिए तो कहते भी नहीं। तो जो जिसको ज्ञानी होना है या निराकुल सुख की प्राप्ति होकर के सुखी होना है, आत्मिक सुख चाहिए, आत्म शांति जिसको चाहिए, उसके लिए जिन्होंने आत्म शांति प्राप्त की है वो तो अपनी शांति में अनुभव करते हुए इस शांति कैसे प्राप्त हो वो अच्छी तरह बताते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं। हम सोच समझ करके जहाँ तक ऐसा अनुभव नहीं हुए अंतर खोज करें, अंतर में तलाश करें, और जैसा भी कहा है ऐसा प्रयोग करें, ऐसा प्रयास करें। तो जैसे दूसरे संसारी जीव भी मोक्ष मार्ग में आए और मोक्ष में गए, ऐसा हम भी कर सकते हैं। हम बाजार में जाते हैं तो ऐसा नहीं कहते कि हम स्कूल में हमने किसी ने पास सिखाया नहीं। एक लड़का होता है, जैसे हम भी थे पहले, तो हमारी पढ़ाई पूरी करके हम बाजार में गए तो बाजार में यही कहेंगे कि हमने तो मास्टर साहब ने कभी धंधा नहीं सिखाया, हम धंधा कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कभी कहते, हमने नहीं सिखाया, हम नहीं सीखे हैं, फिर भी हमको जो पैसे की जरूरत है तो हम सीखेंगे और हम ऐसा धंधा करेंगे, ऐसा बिजनेस करेंगे कि सबको पीछे रख देंगे, हम सबसे आगे निकल जाएंगे। इतना उत्साह से हम प्रवेश करते हैं। दुकान लगाने वाले क्या करते हैं बाजार में, कि अपने जिस आइटम का बिजनेस करते हैं ऐसी 500,000 दुकान और होती है, हमारी नई कैसे चलेगी ऐसा हमको शंका पड़ता है क्या। और इसी लाइन में कई लोगों ने देवाला भी निकाला है, इसका भी विचार नहीं करते, हमारी नई दुकान है इसका भी विचार नहीं करते। हम तो ऐसा विचार करते हैं कि हमारी दुकान सबसे अच्छे से अच्छे काम करने वाली होगी। ऐसे उत्साह से प्रारंभ किया जाता है, अगर प्रारंभ में उत्साह नहीं होता तो काम नहीं आगे होता। इसलिए हमें उत्साह रखना है के अनंत सिद्ध हो गए, हमको भी सिद्ध होना ही है, क्यों नहीं हो गए? हम जरूर हो सकते हैं, इसलिए हमें हमारी कोई भी गलती नहीं रहे और सही मोक्ष मार्ग में हम कैसे आ सके इसकी पूरी दरकार करके पूरी ताकत से हमें काम लेना है, तो ये अवश्य उसमें सफलता मिलती ही है, नहीं मिले ऐसी बात नहीं है। तो ये विषय आज यहाँ पूरा करते हैं, दूसरा कोई वचनामृत अध्याय करना तो लेने दो सौ दस पृष्ठ संख्या है 59 में सम्यक दर्शन जो आत्म दर्शन है उसका उपाय की बात चल रही है। 210 में क्या बात कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग को हो या धर्म को हो उसके पहले इसके प्राप्ति का उपाय क्या होता है इसकी बात 210 में गुरुदेव करते हैं कि पहले मैंने सम्यक दर्शन होने के पहले श्रद्धा में मैंने विश्वास में ज्ञान में मैंने अपनी समझ में रुचि में मैंने अपनी प्रियता में रस आता है जिसमें रस आना चाहिए और लक्ष्य में, लक्ष्य किसको कहते हैं कि जो बदले नहीं उसको लक्ष्य कहते हैं, यहां पर बदल जाए उसको लक्ष्य नहीं कहते हैं। क्रिया कुछ भी करो, पढ़ो सुनो भगवान का दर्शन करो पंच परमेश्वर का स्मरण करो जप तप करो कुछ भी करो लेकिन लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। जैसे हम व्यापार करते हैं तो खरीद करते हैं तो भी हम कमाई के लिए कमाई के लक्ष्य से हैं, बिक्री करते हैं तो भी कमाई के लक्ष्य से हैं, बही खाता लिखते हैं तो भी हमारा लक्ष्य कमाई का रहता है और हम कोई अच्छा ग्राहक आते हैं तो खर्च कर देते हैं। लड़का बोले 100 रुपया खर्च करने को दो तो हम ना बोलेंगे कितना खर्च नहीं करना है, लेकिन अच्छा ग्राहक आवे तो ग्राहक अच्छा आवे तो 500 रुपया का भी खर्च एक दिन में कर देंगे, उसको घुमाएंगे फिराएंगे होटल में जिमाएंगे। तो हम क्रिया अलग अलग है सब ही बात रहनी चाहिए, श्रद्धा में ज्ञान में रुचि में और लक्ष्य में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अपना मूल स्वरूप, श्रद्धा में प्रतीति में अपना मूल स्वरूप होना चाहिए, विश्वास में कि मेरा स्वरूप ऐसा ही है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत विरह ऐसा ही मेरा स्वरूप है, इसका विश्वास रहना चाहिए। ज्ञान में भी वो आना चाहिए, उसकी रुचि इसका ही रस होना चाहिए, आत्मरस ही जमना चाहिए और लक्ष्य में वही आत्मा रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मुमुक्षु को धर्म प्राप्ति के पहले ऐसी दशा हुई तो इसके वीर्य, वीर्य मैंने पुरुषार्थ, यहाँ वीर्य नाम वीर्य गुण की पर्याय, तो उसका पुरुषार्थ है उसमें स्वभाव सन्मुख की स्फूर्णा चलती रहे। क्या कहें, पुरुषार्थ है वो सहज है और सहज पुरुषार्थ चले उसी का नाम पुरुषार्थ है। तो सहज पुरुषार्थ स्वरूप सन्मुखता का सहज पुरुषार्थ कैसे चले? हमारा पुरुषार्थ राग में और सांसारिक कार्यों में चलता है लेकिन वो स्वभाव की विमुखता का पुरुषार्थ है। राग के साथ जो जोर होता है पुरुषार्थ को पहचानना हो तो जो परिणमन में बल है जोर है उसी का नाम पुरुषार्थ है। तो जो राग के साथ जो जोर रहता है या सांसारिक कार्यों में जो उत्साह बना रहता है जोर रहता है वो उल्टा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ बिना का कोई चीज होता ही नहीं, उल्टा होता है या सुलटा होता है। जो आत्म सन्मुख होता है वही सुलटा है। तो वो कैसे हो गए, उल्टा में से सुलटा कैसे हो गए? कि अगर स्वभाव की रुचि हुई, स्वभाव का लक्ष्य हुआ, स्वभाव का विश्वास आया, श्रद्धा में नहीं, इधर विश्वास को सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो अभी होगा, ऐसा कहेंगे, अभी कहेंगे कि ये सम्यक पहले की बात है, ये तो उपाय की बात है, सम्यक दर्शन पहले उपाय, सम्यक दर्शन होने का क्या है कि जो सम्यक सन्मुख का पुरुषार्थ है वही सम्यक दर्शन को ले आता है। तो सम्यक सन्मुख का पुरुषार्थ कैसे हो कि जिस स्वभाव का लक्ष्य होवे, जिस स्वभाव की रुचि होवे, जिस आत्म स्वभाव का ज्ञान होवे, मैंने ज्ञान मैंने भाव भाषण होवे, ज्ञान में भाषण होवे, भाषण होवे तो रुचि होवे, उसका लक्ष्य होवे और उसमें शंका नहीं होवे कि ऐसा मेरा स्वभाव होगा कि नहीं होगा, अनंत ज्ञान मेरे में होगा कि नहीं होगा, अनंत सुख मेरे में होगा कि नहीं होगा, मुझे तो दिखता ही नहीं है, मुझे तो अनंत ज्ञान दिखने में नहीं आता है, कैसे होगा कि नहीं होगा, ये शंका नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी कि लक्ष्य में आया है, भाव भाषण में आया है और उसकी रुचि भी हुई है और उसका विश्वास भी हुआ है कि नहीं ऐसा ही मेरा स्वभाव है। हाँ, यहाँ विश्वास है, विश्वास मैंने खात्री, विश्वास है। ये चारों पर्याय ज्ञान की ही है। क्या पंचाध्यायी में श्रद्धा को, रुचि को ज्ञान की पर्याय कही है, जो सम्यक पहले होती है, भावभाषण को हो, ज्ञान को हो, लक्ष्य को हो, रुचि को हो, श्रद्धा को हो, सब ज्ञान की ही पर्याय है, क्योंकि ज्ञान ही साधन है, साधन ही है, मुमुक्षुता में दूसरा कोई साधन होता ही नहीं। तो वहां सभी को ज्ञान की पर्याय कही है, गाथा ऐसी चली है पंचाध्यायी उत्तरार्ध में, करीब गाथा है 400 के पहले पहले की, 25 जो गाथा है, 450 से 400 के बीच में वो गाथा है। मैंने गुरुदेव को पूछा था कि यहाँ श्रद्धा रुचि सबको ज्ञान की पर्याय कही है, तो हाँ सम्यक दर्शन पहले तो वो ज्ञान की पर्याय है। क्यों क्यों, अब आप ये पूछ सकते हो कि क्यों, कि भाव भाषण होने से, भाव भाषण तो ज्ञान में होता है, उसमें तो कोई विकल्प नहीं है, तर्क नहीं है। अच्छा, अब भाव भाषण होते ही अनंत सुख का भाषण हो गया तो विश्वास पैदा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी का नाम श्रद्धा है। अब गुण की रुचि है और भाव भाषण में अनंत गुण का भंडार को देखा तो एकदम रुचि तीव्र हो गई, इतने गुण मेरे में भरा है, अनंत गुण मेरे में भरा है, बहुत रुचि हो गई, तो उसको आत्म स्वभाव की रुचि कहते हैं। और इतनी बड़ी चीज है कि पूरा सिद्ध पद है गुरु, आत्म स्वभाव मैंने पूरा सिद्ध पद है, तो इतनी भारी चीज है को लक्ष्मण से हट नहीं सके, हटा चाहे तो भी हट नहीं सके। आचार्य महाराज ने तो ऐसा कहा कि स्वभाव कैसा है कि महा आश्चर्यकारी है, क्या बोले, महा आश्चर्यकारी स्वभाव है, जगत में कोई पदार्थ दिखने पर आश्चर्य नहीं हो गए, ऐसा आश्चर्य भाव भाषण के काल में होता है सम्यक के पहले। तो अगर भाव भाषण हुआ तो इस भाव भाषण में पूरा सिद्ध पद भाषित हो जाएगा, अखंड सिद्ध पद की मूर्ति में हो, तो फिर वो हटने की चीज नहीं रहेगी, हट सकती नहीं, हटाना चाहे तो भी नहीं हट सकती, क्यों कि ऐसी चीज कभी देखी नहीं जी, कहीं भी अनंत काल में ऐसी चीज देखी नहीं, साक्षात सिद्ध पद है, इसका भाव भाषण होता है तो उसका लक्ष्य है वो ऐसा ज्ञान पुरुषार्थ का उत्पादक है। यहाँ गुरुदेव को यह कहना है कि ऐसा जो भाव भाषण वाला स्वरूप निश्चय स्वरूप लक्ष्य वाला ज्ञान है वो स्वरूप सन्मुखता के पुरुषार्थ का उत्पादक होता है, पुरुषार्थ की दिशा बदल जाती है, दिशा बदलने से दशा बदल जाती है, उस समय दर्शन को पैदा करने वाला है। ये बात दिया है, आगे भी दिया है गुरुदेव जी, जी
तो जब हमारे परिणामों में
जड़ और चेतन भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। जड़ और चैतन्य भिन्न भिन्न पदार्थ हैं और शुद्ध आत्मा के परिणति शुद्ध करने के लिए भिन्नता का ज्ञान आवश्यक है, जिसको शास्त्र में भेद ज्ञान कहा है। जहां तक भिन्नता का ज्ञान नहीं रहता, वहां तक अभिन्नता का ज्ञान रहता है। उल्टा, दो ज्ञान उल्टा है। इसलिए हमें शरीर आदि जितने भी जड़ पदार्थ हैं, इससे भिन्नता करनी है। अभिन्नता जो हुई है उसको छोड़ देनी है और भिन्नता करनी है। तो भिन्नता कैसे होए कि उनकी जात की पहचान करे। तो बिना पहचान, आत्मा की पहचान बिना इसका स्वभाव का महिमा नहीं आएगी, और बिना स्वभाव की महिमा आए बिना पुरुषार्थ चलेगा नहीं। अब देखिए, गुरुदेव का एक वचनामृत है, 122 पृष्ठ पर है, वचनामृत 446 है। प्रश्न उठाया है किसी ने गुरुदेव के सामने कि आत्मा का साक्षात्कार हमको करना है, लेकिन कैसे करना। क्या प्रश्न उठाया कि आत्मा में अनंत ज्ञान भरा है, अनंत दर्शन भरा है, अनंत सुख भरा है, इसका हमें साक्षात्कार करना है, कैसे करें। हमारा पुरुषार्थ चलता नहीं, ये समस्या है कि हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया है कि देखिए, चैतन्य स्वभाव का महिमा कोई अचिंत्य है, चिंतन से पार जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं, चिंतन कर करके पार जाएगा, ये बात नहीं है, क्योंकि स्वभाव ही अचिंत्य है। अगर कोई कहता है कि चिंतन करने से मिल जाता है, तो उसको स्वभाव अचिंत्य है इसका पता नहीं है। चर्चा चली थी ना, उत्तर आ गया इसका। तो ऐसा भी कहते कि आत्मा का रटन करो, आत्मा का चिंतन करो, अनुभव हो जाएगा। अचिंत्य स्वभाव का चिंतन क्या करेगा तू, जो स्वभाव स्वभाव से ही अचिंत्य महिमावंत है, उसका चिंतन तू कैसे करेगा। मैंने जो अचिंत्य है उसको तुझे चिंतन की मर्यादा में ले आना है, आएगा तो नहीं, तो अनुभव होगा कहां से। तो कहते हैं कि चैतन्य स्वभाव की महिमा कोई अचिंत्य है, ऐसा भीतर से महिमा आवे तो स्वे तरफ का, स्वे बाजू का, स्वे की ओर का पुरुषार्थ खड़ा हो जाए। ये पुरुषार्थ खड़े होने का कारण महिमा है। महिमा कहां से आती है, पहचान से आती है जी। पुरुषार्थ महिमा से आता है, वो तो कहां, महिमा कैसे होती है, पहचान से होती है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि पहचान कैसे होती है। क्योंकि अपनी महिमा नहीं आई, इसलिए ऐसा स्वीकार ही नहीं किया। स्वीकार ऐसा करता है कि मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो पामर हूं, मैं तो बनिया हूं, मैं तो व्यापारी हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, ऐसा करता है। तो यही कारण से, ऐसा अज्ञान के कारण से शरीर धारण किया। शरीर जो है संयोग में आया, वो अज्ञान के कारण से आया, कर्म फल है वो। हाँ, अज्ञान का फल में सब परिभ्रमण होता है, जन्म मरण होता है। है कि आपने कोई विचार तो निर्णय तो निश्चय तो बनाया है, आपने कोई निश्चय तो बनाया है, ठीक है। अगर आपने कोई निश्चय किया है कि ऐसा हो तो ऐसा हो, तो फिर कोई समझने की बात रहेगी नहीं, क्योंकि आपका निर्णय हो चुका है। अगर आपको कोई निर्णय नहीं हुआ हो और समझने के लिए कोई अवकाश हो तो समझ में आना आसान है। लेकिन आपने कुछ बात पक्की कर ली हो कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो फिर दूसरी बात वहां प्रवेश होना मुश्किल हो जाएगी। ये तो सच्ची बात है, ये बात तो सच्ची है। ऐसा क्यों कि ऐसा स्वीकार सही रूप से नहीं किया,
क्योंकि ये ज्ञान
है। उसने स्वीकार राग में किया है, ज्ञान में नहीं किया है। तो यही तो बताते हैं इस अज्ञान को। हम तो आत्मा को शुद्ध करने की बात करेंगे। अब शरीर से किया या कोई ऐसा है कि सबको अपनी 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 धारणा सबकी अलग अलग है। आपकी कुछ धारणा आत्मशुद्धि के लिए या दिव्य ज्ञान पाने के लिए आपके कोई विचार भी हैं, लेकिन वो विचार हमारा भी होवे ऐसा संभव नहीं है। हमारे विचार हो आपका भी हो जाए ऐसा कुछ नाम तो सब लेते हैं, लेकिन आप ऐसे समझता है, आप ऐसे समझते हैं। वास्तव में ऐसा है कि नहीं है? शरीर की शुद्धि माने क्या? शरीर की शुद्धि मैंने शरीर में गंदगी नहीं होना, वो है शरीर की शुद्धि माने क्या? ठीक है, वही पुद्गल, तो जो पुद्गल है शरीर का वैसा ही रहेगा। इसमें जो हड्डियां हैं वो हड्डियां रहेंगी, इसमें जो खून है वो खून रहेगा, चमड़ी है वो चमड़ी रहेगी, बाल है वो बाल रहेगा, जो भी सप्त धातु है वो की वही रहेगी। क्यों? तो उसमें कोई तो फर्क होने वाला नहीं, शरीर भी चेतन होने वाला है ही नहीं। उसकी शुद्धि स्नान से करो, धोने से करो, कुछ भी करो, आप 10 बाल्टी से नहाओ, 1 बाल्टी से नहाओ या 1000 बाल्टी से स्नान करो, स्नान करने के दूसरे मिनट में मक्खी आकर के बैठ जाएगी। निर्मलता मैंने माने क्या? निर्मलता मैंने क्या? तो यहाँ ये बात है कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, एक दूसरे है भिन्न है, इसलिए एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता।
नहीं, एक
अगर भिन्न होवे और एक दूसरे का कार्य होवे करे तो वो भिन्न रहता नहीं। जड़ कभी चेतन होने वाला नहीं, चेतन कभी शरीर गुलाम नहीं है और आत्मा भी गुलाम नहीं है, सब दोनों पदार्थ स्वतंत्र है। वैसे आपकी मान्यता है, ऐसी आपकी मान्यता है, लेकिन समूह की ऐसी मान्यता है, वो कैसा लेना है?
वो मेरी मान्यता गलत
है।
वो समझ लीजिए
आप, बस ये आप अब बात थी, अब जब बात ठीक है कि देखिए बात नहीं, बात वो है कि भगवान सर्वज्ञ देव तीर्थंकर देव ने छह द्रव्य का प्रतिपादन किया है, छह द्रव्य का प्रतिपादन किया है कि छह जाति का द्रव्य है, उसकी संख्या भी दिया है। एक जीव जाति का द्रव्य है जिसकी संख्या अनंत है, एक पुद्गल जाति का परमाणु द्रव्य है इसकी संख्या जीव से भी अनंत अनंत है, आकाश एक ही द्रव्य है, धर्मास्तिका एक ही द्रव्य है, अधर्मास्तिका एक ही द्रव्य है और कालाणु असंख्य द्रव्य है। छह द्रव्य का मतलब ये हुआ कि छह में से कभी पांच नहीं होता और छह में से कभी सात नहीं होता। जब जाति अलग अलग है इसका मतलब ये है कि हरेक में अपनी अनंत शक्ति है, अपना कार्य करने के लिए दूसरे की शक्ति की भी जरूरत नहीं है। क्यों? कि द्रव्य इसका नाम है कि जिसमें अनंत शक्तियां हो उसका नाम द्रव्य है। तो जीव में भी अनंत शक्ति है और एक परमाणु में भी एटॉमिक एनर्जी जिसको कहते हैं वो अनंत है, तो आजकल सिद्ध करने की साबित करने की जरूरत नहीं। तो परमाणु को इस ऐसे अनंत परमाणु से ये शरीर बना है। शरीर क्या चीज है? अनंत परमाणु का स्कंद है, जथा है। उसमें एक एक परमाणु अनंत शक्ति रखता है अपने। इस परमाणु को जीव छू नहीं सकता, जीव उसका कुछ कर नहीं सकता, करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि उसमें अपनी अनंत शक्ति है। और हमारी जो आत्मा है ऐसी प्रत्येक आत्मा भी अपनी अपनी अनंत शक्तियां हैं। ज्ञान अनंत है, चारित्र अनंत है, शांति अनंत है, दर्शन अनंत है, सभी प्रकार की अनंत शक्तियां भरी है। इसके लिए भी दूसरा द्रव्य की कोई मदद की जरूरत नहीं है। अब बात हो रही है कि हमारे में जो ज्ञान आदि अनंत है वो शक्ति रूप में है, अवस्था रूप में तो अज्ञान है। तो हमारी अवस्था हम कैसे अनंत ज्ञान प्रकट हुए ऐसी बना सके, इनका कोई विधि है, रास्ता है तो क्या है, यही समझने की चीज है। तो इसके लिए हमारे श्री गुरु जो भी आगे हो जाकर के सिद्ध होने वाले हैं, ऐसे महान आचार्य हैं, उन्होंने ये बात कही कि तुम जड़ परमाणु से शरीर आदि से एक भिन्न चैतन्य पदार्थ है, तेरी शक्ति खोलने के लिए शरीर की जरूरत नहीं क्योंकि वो जड़ है, वो कुछ जानता नहीं है, वो कुछ करता, वो करता है तो जड़ की क्रिया करता है, अपना परमाणु परमाणु की क्रिया करता है, वो जीव की कोई क्रिया कर सकता नहीं है, तभी तो भिन्न रहता है। अगर एक दूसरे का कार्य करे तो भिन्न रह सकता नहीं, अभिन्न हो जाता है। भिन्नता का मतलब यही है कि एक दूसरे का कार्य नहीं कर सके, इसका नाम ही भिन्नता है। तो जहां तक हमारी धारणा ऐसी रहेगी कि हम शरीर से आत्मा का कार्य करेंगे वहां तक हमारी आत्मशुद्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि सारा संसार में ये बात तो चल रही है कि शरीर आत्मा का कार्य करता है और आत्मा शरीर का कार्य करता है, जबकि हमारे आगम यही कहते हैं कि आत्मा का कार्य शरीर नहीं कर सकता, शरीर का कार्य आत्मा नहीं कर सकता, वो तो हमारा आगम पुकार पुकार करके कहते हैं, और इसी का नाम तो वेद ज्ञान है, और वेद ज्ञान से ही शक्ति का विकास होता है। तपस्या मैंने अपन ये लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर की क्रिया को हम तपस्या समझ बैठे हैं, इसलिए हम भी ऐसी ही तपस्या नकल करने को चले जा रहे हैं, और तपस्या करते हुए भी केवल ज्ञान हमको नहीं होता है जो भगवान महावीर स्वामी को हुआ, तो कहीं हमारी गलती तो है ने? उसने तपस्या किया और केवल ज्ञान हुआ, और हमने भी इसकी शरीर की क्रिया को तपस्या मान करके हमने भी ऐसी नकल करने को कोई कोशिश किया, लेकिन हमको तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, नहीं आ सकती है। सही बात है,
तो
कर्म फल, वो कर्म फल है, पूर्व कर्म का फल है, पूर्व कर्म की क्रिया है। तो आज का तो समय खत्म हुआ है, कल इस बात को लेंगे अपन। तो ये तपश्चर्या क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब चीज अध्यात्म दृष्टि से दूसरी है, और जो लोगों में प्रसिद्ध है वो बात दूसरी है, अलग अलग बात है। जरा